मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 28 अगस्त 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं भारत की खाद्य नीति का जो इतिहास रहा है इस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। इनफैक्ट सच पूछिए तो अगर हम सिलेबस के सीधे बात करें तो सिलेबस में कहीं भी यह पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द को लेकर के चलते हैं तो जैसा कि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, तीन मुख्य क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के हैं। एक है कृषि का, दूसरा है उद्योग का और तीसरा है सेवा क्षेत्र का। तो डेफिनेटली जो हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी स्पेशली आजादी के बाद, वह कृषि व्यवस्था से हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही स्वाभाविक था कि भारत शुरू से ही अपनी एक खाद्य नीति बनाए। और यहां मैं जिस खाद्य नीति की बात करने जा रहा हूं, इनफैक्ट वह इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि भूमि के बारे में क्या क्या किया जाएगा, किसानों को क्या लाभ दिया जाएगा, उत्पादन कैसे किया जाएगा, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अपने देश के उन तीन चरणों के बारे में बताने जा रहा हूं, तीन अलग अलग स्टेजेस जब हमने एक पर्टिकुलर तरह की खाद्य नीति तैयार की। और मुझे लगता है कि इसको जानने के बाद आपके दिमाग में हमारी जो कृषि व्यवस्था रही है और कृषि व्यवस्था के बारे में लगातार सरकार जो पॉलिसीज बनाती रही हैं और कृषि के क्षेत्र में हमने जो अचीवमेंट किए हैं उसका एक अच्छा खाका तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला चरण है खाद्य इतिहास का आप कह लीजिए, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद की हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वह है 1947 से बट नेचुरल है से लेके 1980 तक, 1947 से 1980 तक। इससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था क्या रही है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे और यह परिचय आपको स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मिला होगा, यानी कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है उसके इतिहास में, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, डेफिनेटली आप उसके बारे में जानते हैं। तो हम उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला जो उद्देश्य निश्चित किया गया वह यह था कि हम अपने देश के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचा सकें। खाद्यान्न पहुंचा सकें इसका मतलब है कि खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। उस समय जो भी हमारी आबादी थी और जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था उसमें काफी कुछ कमी थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके लिए सरकार ने कोशिशें शुरू की और आपको मालूम होगा, देखिए इसका जो पीरियड है वो 1947 टू 1980 है, काफी लंबा समय यहां आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसी दौर में आपको ध्यान होगा, डेफिनेटली इतनी जानकारी तो आप रखते ही होंगे कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई थी, कृषि क्षेत्र की क्रांति, जिसे आप ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति, है ना, 1966-67 के आसपास उसकी शुरुआत हुई। अब आप देखिए कि जो हरित क्रांति थी वो क्या थी। मैं यहां हरित क्रांति के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि हरित क्रांति का मतलब हुआ कि हमारे खाद्यान्न उत्पादन को हम बढ़ा सकें। तो कैसे आप बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा बढ़ाएंगे। तो हरित क्रांति के तहत आप देखते हैं कि जो उन्नत किस्म के बीज हैं वो लाए गए और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके। और सच पूछे तो 1980 तक भारत इस स्थिति में आ चुका था कि वह अपने आप को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कह सके कि ठीक है, हमें अब खाद्यान्न कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी मालूम होगा कि 1965-66 में जबरदस्त रूप से अकाल पड़े थे, उसी समय आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था 1965 में, और उससे पहले 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो चुका था। तो इन सब कारणों से भारत को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ा था खाद्यान्न को लेकर के, फूड ग्रेन्स को लेकर के। इसमें इस समय एक ऐसा आया था जब हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ा था, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन हरित क्रांति से हम 1980 तक सच पूछिए तो खाद्यान्न के मामले में काफी कुछ आत्मनिर्भर हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो लोग हैं उन तक हमने खाद्यान्न को भौतिक रूप से पहुंचा दिया, यानी कि जो हमारी अपनी जरूरत थी, अपनी जरूरत का अनाज हम उत्पादन करने लगे। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज तक। देखिए, जब सामान्य रूप से हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि यार अब तो बात बन गई, खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास तो खूब सारा अनाज है। लेकिन उससे बात बनती नहीं है। तो जो सेकेंड फेज था, शब्द का फर्क देखिएगा, तो पहले फेज को हमने कहा खाद्यान्न उपलब्ध कराना। जो दूसरा फेज था वो था खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच, इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड ग्रेन। ठीक है, खाद्यान्न तो हमारे पास है, राइट, खाद्यान्न तो हमने पहुंचा दिया लोगों तक, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि वह उसे खरीद सकें। लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं था। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ कि सेकेंड स्टेज पर आपको इस बात पर जोर देना होगा कि किस तरीके से हम अपने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा सकें, यानी कि उन्हें रोजगार दे करके, काम धंधे उपलब्ध करा के, स्वरोजगार में लगा करके, उद्योगों में लगा करके उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएं ताकि वो अनाज खरीद सकें। और आप देखें कि 2000 तक पहुंचते पहुंचते, सन 2000 तक पहुंचते पहुंचते, मतलब 1950 में जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन था उसके 3 गुना उत्पादन हम करने लगे थे। लेकिन उस समय भी बाकायदे अखबारों में आपको ये खबरें पढ़ने को मिल जाती थी कि भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, अनाज हमारे पास इतना है लेकिन अभी भी हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। बल्कि उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सरकार से कहा कि भाई आपका अनाज सड़ रहा है, बर्बाद होता रहता है, तो आप इसे दूसरे लोगों को जो भूखे मर रहे हैं मुफ्त में क्यों नहीं बांट देते। हालांकि उसके लिए फिर सरकार ने अपने तर्क दिए कि ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन यही है कि कैसे आप लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा करके उन्हें इस लायक बना सकें कि वो जो हमारे पास उपलब्ध अनाज है उसका वो उपभोग कर सकें। तो इस दौर में सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की। वो योजनाएं क्या हैं आपको इसी दौर में आपको मिलेंगी। जो सेकेंड फेज है हमारा, इसमें बकायदे काम के बदले अनाज योजना ये शुरू की गई कि आप काम कीजिए उसके बदले में आपको अनाज मिलेगा। ये 1980 के आसपास बहुत ज्यादा हुआ था। फिर ये हुआ कि जो खाद्यान्न है उन पर खूब छूट दी गई, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराया जाना, और बकायदे लाभकारी रोजगारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ये हमारा सेकेंड फेज था, जो खासकर आप समझ लीजिए कि लगभग लगभग 10-15 सालों तक विशेष रूप से चला, 1990 तक आप इसे मान सकते हैं। इसके बाद है तीसरा फेज। अब आप देखिए कि हमारे पास खाद्यान्न है, हमारे लोगों के पास खाद्यान्न को खरीदने के लिए कमोवेश पैसा भी है। अब क्या हुआ? तो इस दौर में आप देखिए कि हरित क्रांति ने एक विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी थी। आपको मालूम है कि उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके कारण जो भूमि है वो प्रदूषित हो रही है, भूमि जहरीली हो रही है। जो अनाज पैदा हो रहा है, जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, उनमें भी जहर आने लगा है। और इसी दौर में आप अक्सर जब आप एनवायरमेंट की हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो धारणीय विकास की का जो कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से उभरा, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उद्योगों के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, हरित क्रांति के कारण जो संकट हो गया था वो आपको मैं बता ही रहा था। और फिर इसी दौर में हुआ क्या कि जो डेवलप्ड कंट्री थे, जो विकसित राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों ने अपने कृषि को उद्योग घोषित कर दिया कि कृषि भी हमारे लिए उद्योग है। देखिए, जब आप किसी चीज को उद्योग घोषित कर देते हैं तो पूरी तरह से लाभ और हानि पर केंद्रित हो जाता है और सरकार से उसे बहुत ज्यादा फायदे मिलने लगते हैं और इस तरह से कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने लगता है। तो जब कृषि को आप उद्योग घोषित करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका शोषण होने लगेगा। कुल मिलाकर के यह कि प्रकृति पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा, नगरीकरण की स्थिति के कारण जमीन कम होने लगी, जमीन का क्षरण होने लगा, भूमि का कटाव होने लगा, ये सारे संकट आने लगे, टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब क्या किया जाए? तो फिर ये धारणा आई कि नहीं, कृषि को बढ़ाने से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि कृषि को इस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने लायक बन सके, यानी कि इसे ही हम कहते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ये बात कही जाने लगी कि अब हमारे देश को एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, नवीन हरित क्रांति। मतलब हरित क्रांति को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आबादी तो है और आपको उनका पेट भरने के लिए फूड ग्रेन चाहिए। तो नवीन हरित क्रांति ये थर्ड और लास्ट फेज है। तो ये नवीन हरित क्रांति क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, जैविक कृषि पर जोर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इस बार के बजट में आप देख रहे हैं, उसके बाद चर्चा हमारे यहां होने लगी है, नो बजट फार्मिंग। तो इसके तहत जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो यही कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग कम कीजिए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कम कीजिए। कम क्या कीजिए, मतलब बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, और जैविक कृषि कीजिए, कंपोस्ट खाद, और मतलब एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती कीजिए, ताकि जमीन भी जहरीली ना हो, उससे उत्पादन होने वाला जो अनाज होगा वह भी बहुत अशुद्ध हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, और प्रकृति भी, जो हमारा पूरा का पूरा जो पर्यावरण है वह भी प्रदूषण से मुक्त हो सके। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये तीन फेजेस हमारे, आप यूं कह लीजिए कि खाद्य नीति के विकास के रहे हैं, और इन अलग अलग चरणों में सरकार ने उसी के अनुकूल अपनी खाद्य नीतियां तैयार की, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के लिए उसी तरह से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई, धन उपलब्ध कराया, और कृषि व्यवस्था हमारी लगातार इसी के पैरेलल बढ़ती रही है। और इनफैक्ट सच पूछिए तो जिस समानांतर तरीके से कृषि व्यवस्था बढ़ती रही है, उसी को इन तीन भागों ने, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिवाइड किया है। एक बार फिर से मैं इन तीनों चरणों के नाम आपको अलग अलग बता देता हूं, आप इन्हें अपने दिमाग में रखें, और फिर आप जब कृषि नीति पर जाएंगे बात करेंगे, कभी भूमि सुधार किया जा रहा है तो कभी कुछ किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में अब ये जो सांचा बन गया है, या कह लीजिए ढांचा तैयार हो गया है, वो ढांचा आपको उन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, पहला है वह चरण जब उद्देश्य था अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, इसके बाद दूसरा चरण आया, दूसरे चरण में ये व्यवस्था की गई कि खाद्यान्न तक उनकी आर्थिक पहुंच बनाई जाए, यानी कि उनमें इतनी क्रय शक्ति पैदा की जाए कि वो खाद्यान्न को खरीद सकें, और तीसरा जो चरण था वो धारणीय विकास का चरण था, यानी कि आप कह सकते हैं कि नवीन हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई, और यह आवश्यकता केवल भारत में ही महसूस नहीं की गई बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की गई। तो मित्रों, ये तीन चरणों में हमारी जो खाद्य नीति है वो गुजरती हुई वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। तो मित्रों, आज के इस मुख्य विषय के तहत इतना ही। अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।